सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धे विवुद्धसयले अर्जत्थबहित्थबन्धनं मुके भक्तिये अहं नमिं पुनो पुनो बंधनम ओचम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 14वीं पुस्तक जो पंचम वर्गणा खंड, उसमें बंधनीय की बात चल रही, बंधनीय अनुयोग द्वार, पृष्ठ संख्या 87, 87 पर आ गए हम। अब यहाँ शंका से शुरू करते हैं। विषय अपना कौन सा चल रहा है, याद है ना? 23 वर्गणा में से कौन सी वर्गणा देख रहे हैं अभी? प्रत्येक शरीर वर्गणा हो गई, उसके बाद ध्रुव शून्य हो गई, बादर निगोद वर्गणा चल रही है। तो बादर निगोद वर्गणा जघन्य किसको होती है? पहले बादर निगोद वर्गणा होती किसको है? हाँ, यहाँ जो बताया बादर निगोद वर्गणा है, तो बादर निगोद जिसके आधार से रहते हैं, ऐसे जो औदारिक शरीर है, उन युक्त जो जीव है, उनके ये होगी, उनके स्वामी कौन हो गया? तो क्षीण कषाय के अंतिम समय में वो जघन्य होगी, क्योंकि उसके बाद बादर निगोद सब निकल जाते हैं और परम औदारिक शरीर होता है, तो प्रत्येक शरीर वर्गणा हो जाती है। तो ये जो हमने देखा था कि कितने जीव होते हैं, उसकी बात चली थी निगोदों की, यानी यहाँ जो संख्या कही थी वो पुलवियों की कही थी। तो ये पुलवी क्या है? तो स्कंद, स्कंद के जो भेद है असंख्यात लोक प्रमाण, उसको कहते हैं अंडर। उसके जो असंख्यात, एक एक के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, उसको कहेंगे आवास। एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी होती है, और एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होते हैं, और एक निगोद शरीर में अनंत जीव होते हैं। अब शंका, क्षीण कषाय के अंतिम समय में पुलविया आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण होती है, ऐसा सूत्र में कहा गया है, उस पर इसकी शंका चल रही है। यदि पूर्वोक्त गुणकार पुलवियों का होता है तो यह कथन घटित नहीं होता, क्योंकि द्विचरम समय में मृत जीवों की आवली के असंख्यातवे भाग मात्र पुलवियों को पल्योपम के असंख्यातवे भाग से गुणित करने पर क्षीण कषाय के अंतिम समय में पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र पुलवियां उपलब्ध होती हैं। क्योंकि हमने देखा तो असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा श्रेणी क्रम से, असंख्यात गुणा श्रेणी क्रम से ये निगोद जीवों का वहाँ मरण होता है, इसलिए ये पुलवियों को ही उसने पल्य के असंख्यात भाग से गुणा किया, पुलवियों को। एक एक अभी शंका ही चल रही है। एक एक स्कंध में अंडर असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, तथा एक एक अंडर में आवास असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, और एक एक आवास में पुलवियां असंख्यात लोक मात्र होती है। यह प्रकार पहले कहे, इस प्रकार पहले कहे आए हैं, यानी ये पहले कथन हो चुका है। इसलिए क्षीण कषाय के अंतिम समय में आवली के असंख्यात वे भाग मात्र पुलवियां है, यह वचन घटित नहीं होता। ऑब्जेक्शन किस लिए इसका? पुलवी को इतनी क्यों कहते हैं, आवली के असंख्यात वे भाग क्यों कह रहे हो? हमने तो देखा था कि वहां तो एक एक जो आवास है उसमें पुलवी जो असंख्यात लोक प्रमाण होती है, और आप कहते हैं आवली के असंख्यात भागी होती है, वो शंका ही चल रही है अभी भी। वहां की पुलवियों का असंख्यात बहुभाग क्षीण कषाय गुणस्थान में नष्ट हो गया है, यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि अपने शरीर में स्थित निगोद जीवों को पल्लवों के असंख्यातवे भाग से भाजित कर वहाँ लब्ध एक भाग के नष्ट होने पर पुलवियों के असंख्यात बहुभाग का विनाश मानने में विरोध आता है। जीव कितने नष्ट हुए तो असंख्यात गुणा अंतिम समय तक हो जाएंगे, यानी उसके पूर्व समय में तो असंख्यात भाग ही नष्ट हो जाता है, अंतिम समय में ही मैक्सिमम पॉसिबल रह जाते हैं। इसलिए पुलवियों का असंख्यात भाग नष्ट हो गया और जीव मात्र असंख्यात गुणा नष्ट होते जाएंगे, ये कहना भी युक्त नहीं है, ऐसे इसका कहना है। अंतिम समय में मरे हुए जीव द्विचरम आदि समयों में मरे हुए जीवों के असंख्यातवे भाग प्रमाण होते, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो असंख्यात गुणा होते पहले हम देख चुके हैं, क्योंकि इस कथन का गुणश्रेणी क्रम से मरण प्ररूपणा के साथ विरोध आता है। गुणश्रेणी स्वरूप से मरण कल हमने देखा था, जीवों की संख्या वो असंख्यात गुणा होती है, पहले विशेष अधिक बढ़ते जाते हैं। क्षीण कषाय गुणस्थान के पहले समय में मरने वाले जीवों की संख्या से दूसरे समय में विशेष अधिक, तीसरे समय में विशेष अधिक होते जाएगा। पहले तो असंख्यातवा भाग विशेष अधिक होगा, फिर संख्यातवा भाग विशेष अधिक होता जाएगा, बाद में वो संख्यात गुणा गुणित क्रम से, फिर असंख्यात गुणा क्रम से, अवली का असंख्यातवा भाग शेष रहता है तो असंख्यात गुणित क्रम से वहाँ जीव मरते हैं। ये लंबी चौड़ी इसकी शंका हो गई। अब इस शंका का समाधान करते हैं। क्षीण कषाय जीव के शरीर में उत्कृष्ट और जघन्य पुलविया मैक्सिमम अधिक से अधिक हो और कम से कम हो तो भी कितनी होती है, आंवली के असंख्यातवे भाग मात्र ही होती है। ये तो नियम बताया उन्होंने, अंतिम समय में ऐसे नहीं, अंतिम समय में वो तो बड़े बढ़ेंगे, फिर भी वो कभी भी क्षीण कषाय जीव के शरीर में उत्कृष्ट या जघन्य आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण ही पाई जाएगी। आपका ऐसा प्रश्न है, तीर्थंकर जीवों का जो गृहस्थ अवस्था में शरीर है उसमें निगोद है कि नहीं, वो तो सबके होगा ना। खून उनका दूध जैसा सफेद पाया जाता है, आहार निहार भी नहीं, निगोद है नहीं कि नहीं। हाँ, गृहस्थ तीर्थंकर ऐसा कुछ कहा है? केवली के लिखा हूँ, तीर्थंकर का कहाँ लिखा है इसमें? हाँ नहीं, मुझे भी ऐसी शंका थी, बीच में हमने बहुत ढूंढा ना गृहस्थ तीर्थंकर के होता है क्या नहीं होता है, यानी गृहस्थ तीर्थंकरों के गृहस्थ है नहीं, जो बालक है मुनि दीक्षा लिए है, जब तक केवली नहीं होते तब तक ऐसा अलग से कहीं, क्योंकि मैंने भी ढूंढने की बहुत कोशिश की कि गृहस्थ तीर्थंकरों के होता है कि नहीं होता। हाँ वही मैंने, यानी पहले ऐसा किसी का प्रश्न आया था गृहस्थ तीर्थंकरों को होता है कि नहीं होता, परंतु ऐसा अलग से उसका कहीं उल्लेख नहीं है। हाँ वहाँ भी नहीं है, ये गृहस्थ तीर्थंकर की बात कहीं आई है, मगर वो किस कॉन्टेक्स्ट में आई वो, हाँ समय ज्ञान चंद्रिका में गृहस्थ तीर्थंकर, परंतु ये निगोद के बारे में आई है क्या अन्य किसी बारे में, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। देखो प्रश्न है तो उसका समाधान मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ भी बता देते ना, इस पॉइंट पर यहाँ बता देते, वो तो केवली का शरीर इतना ही कहा, वो जन्म से तो परम औदारिक नहीं कहते उसको, भले तीर्थंकर का हो, परम औदारिक वो जन्म से तो नहीं कहा है, परम औदारिक शरीर उनके भी 13वें गुणस्थान में कहा है। नहीं उसका तो प्रश्न ही नहीं है। हाँ वो किसके बारे में था वो तीर्थंकर? एक अन्य किसी बारे में होगा, परंतु ये गृहस्थ तीर्थंकर ऐसा मिला 766 में तो ये नहीं इतने हाँ पृथ्वी आदि चार केवली आहारक देव नारक शरीर निगोद रहित और प्रतिष्ठित है। केवली इतना ही कहा है, तीर्थंकर की अलग बात नहीं है। साधारण शरीर के प्रकरण में वहां लिखा है। ये गुण प्रत्यय में वो तीर्थंकर उसके लिए है, गृहस्थ तीर्थंकर गुण प्रत्यय उदित ज्ञान में। ये गृहस्थ तीर्थंकर ऐसा जो हमने मुझे याद है ना कहीं तो पढ़ा था, गुण प्रत्यय में तो देव और नारकी लेते हैं और तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में उनको भी गुण प्रत्यय है, गुण प्रत्यय है उनके। सर्वसिद्धि क्या सबके सबके ही होते हैं जो तीर्थंकर, अन्य जो तीर्थंकर नहीं उनके भी, परंतु उनको वो गुण प्रत्यय कहने में आता है, भव प्रत्यय नहीं उनका, वो अवधि ज्ञान के लिए। हाँ क्या नहीं होते रोग, ये नरक नरक में बीमारी बीमार है जन्म से, इतनी तो उनके रोग होते हैं वहां पर। उसमें कोई भी रोग हो मगर मरण नहीं होता ऐसी बात। हाँ देखो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, देखो पहली लाइन 88 पृष्ठ पर, एक बंधनबद्ध पुलविया असंख्यात लोक मात्र कहीं भी नहीं होती। क्या लिखा? कहीं भी, कि वो एक स्कंदे में इतने, एक अंडर में इतने, एक आवास में इतने, ऐसा जब कहा है, परंतु वहां भी एक बंधनबद्ध नहीं है। एक बंधन है नहीं उसका जो हम एक वर्गणा कह सकेंगे, एक बंधन में एक उनका पूरा। देखो, एक बंधन बद्ध पुलविया असंख्यात लोक मात्र कहीं भी नहीं होती। यहाँ जघन्य का अधिकार होने से आवली के असंख्यात भाग मात्र ही पुलविया होती है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। पूर्वोक्त वचन के साथ विरोध आता है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्षीण कषाय को छोड़कर अन्य स्कंध का अवलंबन लेकर वहां कथन किया है। क्या कहते हैं? क्षीण कषाय में तो कहीं होती नहीं है, परंतु जब हमने पहले देखा ना, एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, उसमें आवास, उसमें पुलविया वगैरह वगैरह, वो कथन सामान्य कथन है, क्षीण कषाय की अपेक्षा से वो कथन नहीं है। यानी क्षीण कषाय को छोड़कर अन्य स्कंदों में हो सकता है, जैसे मूली थुअर आदि उसमें हमने देखा था, तो उसमें ये बातें हो सकेगी, परंतु क्षीण कषाय गुणस्थानवर्ती वाले के ये बात संभव ही नहीं है। और सब स्कंधों में पुलविया असंख्यात लोक मात्र ही होती है ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के नियम को करने वाले सूत्र का व्याख्यान उपलब्ध नहीं होता। जब हम कहेंगे कर्मों की स्थिति कितनी है उत्कृष्ट, तो 70 कोड़ाकोड़ी सागर, परंतु सभी कर्मों की नहीं है ना वहां पर। वैसे यहाँ पर पुलविया वो तो असंख्यात लोक मात्र होती है ऐसा हर जगह नहीं होता। अब पुलवियों का अवलंबन लेकर कितने ही आचार्य निगोद जीवों के मरण क्रम का कथन करते हैं, उसे बतलाते हैं। यह अन्य जो कोई उपदेश है उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। यथा क्षीण कषाय के प्रथम समय में मरने वाली म करना पुलविया स्तोक है। देखो पुलवियों की अपेक्षा से बात की है, अभी एक एक पुलवी में इतने निगोद शरीर और एक एक निगोद शरीर में इतने इतने अनंत जीव, वो समझ लेना। दूसरे समय में मरने वाली, वो भरने वाली हो गया। पुलिवियां विशेष अधिक है, तीसरे समय में विशेष अधिक है। इस प्रकार आवली पृथत्व पृथक्त्व काल जाने तक विशेष अधिक विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण आवली के असंख्यात विभाग का प्रतिभाग स्वरूप है। इससे आगे विशेष अधिक के क्रम से मरण करने के अंतिम समय तक संख्यात विभाग अधिक है, यानी शुरू में असंख्यात भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक है, बाद में संख्यात भाग अधिक है। अनंतर गुणश्रेणी रूप से मरण करने के प्रथम समय में संख्यात गुणी मरण को प्राप्त होती है, क्या पुलविया। इस प्रकार क्षीण कषाय के काल में आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल शेष रहने तक संख्यात गुणी मरण को प्राप्त होती है। क्या क्या आपका प्रश्न क्या है? विशेष अधिक रूप से, विशेष अधिक क्रम से जो मरण होता है पुलवियों का, निगोदों का, पहले में पहले विशेष अधिक है ना जी, और बाद में गुणित क्रम में। अनंतर लिखा ना, अनंतर गुण श्रेणी रूप से मरते हैं। अन्य अन्य जीव मर रहे हैं ना यहाँ, वही तो बात बता रहे हैं। क्षीण कषाय के पहले समय में अनंत अनंत निगोद राशि है उस जीव के शरीर में। पहले समय में इतने मरे, दूसरे समय में असंख्यात भाग अधिक मरे, तीसरे समय में असंख्यात भाग अधिक मरे, तो शुरू में तो विशेष अधिक मरते हैं, बाद में गुणित प्रमाण में मरते हैं। तो आचार्यों ने चार भाग किए ना, पहले असंख्यात भाग अधिक, फिर संख्यात भाग अधिक, फिर संख्यात गुणा, फिर असंख्यात गुणा, उसको गुणश्रेणी रूप मरण कहा। शुरू में जो है वो विशेष अधिक रूप से, विशेष अधिक क्रम से मरण। ये अन्य अन्य नए नए जीव मर रहे हैं ना, जो ऑलरेडी अनंत अनंत है और वहां शुरू में कुछ उत्पन्न भी हो गए, तो वे सारे मर रहे हैं। अरविंद भाई समझ में? नहीं, समाधान नहीं हुआ। विशेष अधिक वाला अंतिम समय। देखो हम मान लेते सौ समय वाला क्षीण कषाय का गुणस्थान के सौ समय है मानने के लिए। अभी सत्तर समय तक क्या है, विशेष अधिक जीव मर रहे हैं। वो विशेष अधिक क्रम से मरने वाले, उसकी वो तो लिमिट सत्तर समय, किसके क्षीण कषाय के सत्तर समय तक, हाँ अंतिम समय, सत्तरवा जो समय वो अंतिम समय है, विशेष अधिक का अंतिम समय। उसके बाद क्या होगा, गुणित क्रम में मरण होगा। तो आगे असंख्यात गुणा क्रम से, वो भी मैंने यहाँ तीस समय समझाने के लिए लिए। परंतु असंख्यात गुणा क्रम कब शुरू होता है, आवली का असंख्यात भाग शेष रहता है तब शुरू होता है। हाँ इस प्रकार नीचे से चौथी लाइन, उन्होंने पहले संख्यात गुणा क्रम बताया, उसके बाद इस प्रकार क्षीण कषाय के काल में आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल शेष रहने तक संख्यात गुणी मरण को प्राप्त होती है। इससे आगे क्षीण कषाय के अंतिम समय तक असंख्यात गुणी मरण को प्राप्त होती है। जहां असंख्यात गुणी पुलवियों का मरण कहा है, वहां गुणकार आवली का असंख्यातवा भाग होना चाहिए। अन्यथा क्षीण कषाय के अंतिम समय में आवली के असंख्यातवे भाग मात्र पुलवियां उपलब्ध नहीं होती। ये आवली का असंख्यातवे भाग गुणा करते करते वहां तक पहुंच गए। इस विधि से जाकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में जो आवली के असंख्यातवे भाग मात्र पुलवियां मरने से अवशिष्ट रहती है, यानी जो अंतिम समय में मरने वाली जो बाकी रही अभी, वे पीछे द्विचरम आदि समयों में नष्ट हुई पुलवियों से असंख्यात गुणी शेष रहती है। जहाँ से असंख्यात गुणा क्रम शुरू हुआ ना, दूसरे समय में असंख्यात गुणा, तीसरे समय में चौथे, मान लेते हम 10 समय तक असंख्यात गुणा क्रम है, तो पहले 9 समयों में जो सारे नष्ट हो चुकी है उससे असंख्यात गुणी 10वें समय में नष्ट होगे। 9 के टोटल, 9 का टोटल, द्विचरम आदि उल्टा लिया ना, द्विचरम आदि में वो शुरू तक ले लेना, जहां से असंख्यात गुणा क्रम शुरू हुआ था वहां तक। हमने पहले भी देखा था, कहीं भी कोई अपकर्षण है कि अन्य कोई भी जहां उपशम है, तो असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा जहां जहां क्रम बताया है वहां बताया ना, पहले सभी समयों की टोटल, उससे भी अंतिम समय में असंख्यात गुणा रह जाता है। ये हम इतने संयम धारण करने के पीछे अंत समय तक, वो तो गुण श्रेणी देखते हैं, जितना अभी तक निर्जरा हो चुकी उससे भी असंख्यात व असंख्यात गुणा लास्ट समय में होता है। यहां भी ऐसे समझना, चार लाइन में आए ना हम, चौथे लाइन में, अन्यथा गुणश्रेणी मरण नहीं बन सकता, किंतु यहां यह जो पुलवियों का अवली के असंख्यात हुए भाग प्रमाण गुणकार कहा है, अभी ये जो दूसरा उपदेश है ना, तो उसमें क्या कहा, पुलवियों का गुणकार कितना होता है, अवलियों का असंख्यात भाग गुणा पुलवी होती है, ऐसा कहा, वो घटित नहीं होता, क्योंकि यानी वो क्या मानना पड़ेगा, अवली का असंख्यात भाग गुणा अवली का असंख्यात भाग गुणा अवली का असंख्यात भाग गुणा करते जाएंगे तो क्या आफत होगी, क्योंकि इस कथन से क्षीण कषाय के अंतिम समय में नष्ट हुई पुलविया पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण प्राप्त होती है। ऐसा क्यों कहा है, तो कहते हैं कि जघन्य परिता संख्यात का विरलन कर और आवली के असंख्यात वे भाग को विरलत राशि के प्रत्येक एक के प्रति देकर परस्पर गुणा करने पर भी लगाया पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण की उत्पत्ति होती है। यहां जघन्य परिता संख्यात को याद करने की क्या जरूरत थी, नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, आवली है जगन्य युक्ता संख्यात और क्षीण का गुणित क्रम कभी से शुरू हुआ था, जब आवली का असंख्यातवा भाग शेष रहा, आवली का असंख्यातवा भाग असंख्यात ही होगा कि संख्यात होगा, असंख्यात ही होगा, यानी वो मध्यम परिता संख्यात कोई भेद होना चाहिए। यहाँ कहते जघन्य परिता संख्यात भी कोई बात मान ले तो जघन्य परिता संख्यात का हम विरलन करेंगे, ये जघन्य परिता संख्यात बार लिखा, आवली के असंख्यात भाग की बात तो छोड़ दो, मिनिमम पॉसिबल असंख्यात को हमने विरलन किया और उतनी बार आवली का असंख्यात भाग गुणा करेंगे ना, एक बार आवली का असंख्यात भाग गुणा हुआ, दूसरी बार गुणा हुआ, तीसरी बार हुआ, ऐसे हर एक के माथे पर आवली का असंख्यात भाग लिखेंगे हम, तो ये राशि आवली का असंख्यात भाग पल्ले के जघन्य परिता संख्यात बार लिखकर आपस में गुणा करेंगे तो पल्ले का असंख्यात भाग उसका गुणकार आता है। यानी ये जो अंतिम समय की राशि अवली के असंख्यात भाग कही है वो घटित नहीं होगी, यानी हर बार जो अवली के असंख्यात भाग गुणा कहा है ये बात घटित नहीं होती है, इनका कहना है। असंख्यात गुणा कहो तो कहो, पर वो आवली का असंख्यात गुणा वो भी घटित नहीं होगा। हाँ, यानी उसका उतना लेंगे तो भी पल्ले का असंख्यात भाग होता है, मिनिमम असंख्यात लेंगे तो भी लगाए ना। हाँ, यानी ये जो सेकंड कथन है उनका कि हर बार आवली के असंख्यात में भाग गुणा पुलवियां होती है वो घटित नहीं होता। पहले कथन क्या था, निगोदों की संख्या, निगोद जीवों की संख्या वहां आवली के असंख्यात में भाग गुणा ऐसा कहा था, असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा इतना ही कहा, आवली का असंख्यात भाग गुणा होता है ऐसा नहीं कहा। अंतिम समय में जाकर आवली के असंख्यात में भाग इतनी पुलवियां रहती है शेष, इतना ही कहा था। पहले एक वाक्य आया था, देखो 87 पृष्ठ पर अंतिम और 88 पृष्ठ पर पहली लाइन, दोनों में मिलकर क्या लिखा था, कि उत्कृष्ट और जगन्य भी पुलविया एट एनी गिवन पॉइंट, आवली की असंख्यात्व भाग मात्री होती है। एक क्षीण कषाय के बारे में कथन है, पहले शुरुआत में भी आवली की असंख्यात्व भाग थी, असंख्यात गुणा हुआ तो भी आवली का असंख्यात्व भाग ही रहा, फिर असंख्यात गुणा हुआ तो भी आवली का असंख्यात्व भाग ही गुणा रहा, परंतु वो आवली के असंख्यात्व भाग गुणा नहीं हुआ, असंख्यात गुणा हुआ। देखो जो जितने सारे परिता संख्यात के भेद है वो सारे आवली के असंख्यात्व भाग ही है, हा? तो उसी में वो रहा, असंख्यात गुणा होकर भी उतना ही रहा। अब शंका, ये निगोद जीव यहां क्यों मरण को प्राप्त होते हैं? समाधान, क्योंकि ध्यान से निगोद जीवों की उत्पत्ति और उनकी स्थिति के कारण का निरोध हो जाता है। शंका, ध्यान के द्वारा अनंतानंत जीव राशि का हनन करने वाले जीवों को निवृत्ति कैसे मिल सकती है? निवृत्ति यानी मुक्ति। क्या कहते हैं, यहां इतने जीव मर रहे हैं तो वहां हिंसा का पाप नहीं लगेगा क्या? ऐसा कहते हैं। उसका समाधान, अप्रमाद होने से, ये अप्रमत्त दशा है, हिंसा कब कहलाती है? हाँ, क्या सूत्र कुछ आया था ना, हाँ, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। हिंसा की परिभाषा क्या है? प्रमत्त ने असावधानी के कारण प्राणों की हिंसा होती है, उसको हिंसा लिया। अब ये ध्यान दशा में है, अप्रमत्त दशा है, तो उसको हिंसा नहीं कहते। देखो आगे कहेंगे, अप्रमाद होने से। अप्रमाद किसे कहते हैं? समाधान, पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ती और समस्त कषायों के अभाव का नाम अप्रमाद है। शंका, प्राण और प्राणियों के नियोग का नाम हिंसा है, उसे करने वाले जीवों के अहिंसा लक्षण पांच महाव्रत कैसे हो सकते हैं? यानी ये प्राणों से हीन हो रहे हैं ना, ये जीव मर रहे हैं, तो उसको हम अहिंसा महाव्रत होता है उस जीव का, ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ, लीनता है, राग की उत्पत्ति किसके? हाँ, होता है ना, वो तो उनके, देखो यहाँ भी जो मरते हैं वो उनकी आयु पूरी करके मरते हैं, आयु पूरी हुए बिना तो नहीं मरते। निगोद जीव के मरने की बात चले, अपने जैसे अभी अभी आपके शरीर में निगोद जीव मर रहे कि नहीं मर रहे, और नए उत्पन्न भी हो रहे और मर भी रहे, और वहां क्या होगा, नए उत्पन्न होने वालों की संख्या घटेगी और जिसकी आयु पूरी हुए वो मरकर निकल चले जाएंगे। यानी वो अंत में इतने मरते हैं जो कहा है, वो क्यों कहा? क्योंकि अभी नया उत्पन्न होना रुक गया और जो ऑलरेडी उत्पन्न हुए वो अपनी आयु पूरी करके मरेंगे वहां पर। तो इनके वो हिंसा तो कुछ है, वो तो अपनी पूरी आयु करके ही मर रहे हैं। देखो समाधान, क्या पूछा था? इतने जीवों के वो प्राण विरहित हो रहे हैं तो अहिंसा महाव्रत कैसे पलेगा इनका? समाधान, नहीं, क्योंकि बहिरंग हिंसा आश्रय रूप नहीं होती। पहले हमने देखा था ना, रागादि की उत्पत्ति ही हिंसा है, अब इनके रागादि की कोई उत्पत्ति ही नहीं है, और ये जो बाह्य हिंसा वो उनके कारण, अपने कारण वो मर रहे हैं। इनके परिणामों में कुछ है ही नहीं, ना बचाने का भाव है ना मारने का भाव है। शंका, तो किसी को बचाने का भाव हिंसा होगी कि नहीं होगी? हाँ शिव, हाँ, राग की उत्पत्ति हुई ना। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, क्योंकि बहिरंग हिंसा का अभाव होने पर भी केवल अंतरंग हिंसा से सिक्स मस्य के बंध की उपलब्धि होती है। क्या कहना, ये सिक्स मत्स्य, हमने जो तंदुल मत्स्य की बात देखी थी, बाह्य में तो कोई हिंसा नहीं कर रहा है, परंतु अंतरंग के हिंसा के कारण कहाँ सातवें नरक में जाता है। बाह्य में तो कोई उसके हिंसा ही नहीं है, बंद की उपलब्धि होती है। जिसके बिना जो नहीं होता वह उसका कारण है, इसलिए क्या कहते हैं, जिसके बिना जो नहीं होता, उसके बिना नहीं होता, अन्यथा अनुपपत्ति जिसको कहें, धुआं है तो अग्नि के बिना नहीं होता, उसको कहेंगे वो उसके बिना वह नहीं होता। इसलिए शुद्ध नय से अंतरंग हिंसा ही हिंसा है, बहिरंग नहीं, यह बात सिद्ध होती है। जिसके बिना जो नहीं होती है ना, अंतरंग हिंसा होगी तो बहिरंग हिंसा होगी। तो अंतरंग हिंसा ही हिंसा है, बहिरंग नहीं, यह बात सिद्ध होती है। यहां अंतरंग हिंसा नहीं है क्योंकि कषाय और असंयम का अभाव है, ना ही उनके कषाय है और ना ही असावधानी असंयम है कहां भी है। अब ऊपर गाथा पढ़ेंगे हम, यदु मरदो जीवो अयदाचारस निश्चो बंधो पयदसनति बंधो हिंसा में तेण समिधि। नीचे अर्थ तो देखते हैं, चाहे जीव जियो चाहे मरो, अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले जीव के नियम से बंध होता है। क्या कहा, कोई असावधानी से चल रहा है, रस्ते में उधर इधर उधर सारे एडवर्टाइजमेंट देखते देखते, और पैर के नीचे कोई भी जीव नहीं मरा, तो भी क्या है, नियम से बंद होता है। परंतु जो जीव समिति पूर्वक प्रवृत्ति करता है, मुनियों की बात आती ना, हमने प्रवचन सार में भी देखा था और अन्य भी ग्रंथों में, वो चल रहे हैं समिति पूर्वक, कैसे चलते हैं, उसको क्या नाम है, हाँ, इरिया समिति पूर्वक चल रहे हैं, देख के बराबर प्रासुक मार्ग पर से चल रहे हैं, और चलते अभी पैर रखने जाए और इतने में कोई जोर से ऐसे जीव पैर के नीचे आके गिर जाए, उड़कर आए या दौड़ के आए, दौड़ के नहीं, छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं, तो उनकी हिंसा का उनको वहाँ उसका हिंसा यानी मर भी जाए तो उसका उनको हिंसा का बंधन नहीं है, क्योंकि वो समिति पूर्वक चल रहे हैं। तो कहते जो जीव समिति पूर्वक प्रवृत्ति करता है उसके हिंसा हो जाने मात्र से बंध नहीं होता। अब आगे तीन नंबर का, सर्वासे दुपदंते जह दढ़क वचोण बीज हिसरे ही तह समिदीहीन लिप्पई साहु काए सुइरियंतो। सरों की वर्षा होने पर, सरेने शर बाण, बाणों की वर्षा, जिस प्रकार दृढ़ कवच वाला व्यक्ति सरों से नहीं भीतता है, आज बुलेट प्रूफ वो पहनते हैं ना जैकेट, हाँ, तो वो तो गोली बंदूक की भी नहीं घुसती है। तो सरों की वर्षा होने पर जिस प्रकार दृढ़ कवच वाला व्यक्ति सरों से नहीं भीतता है, उसी प्रकार षटकायिक जीवों के मध्य में समिति पूर्वक गमन करने वाला साधु पाप से लिप्त नहीं होता। षटकायिक जीवों के मध्य में ने सर्वत्र षटकायिक जीव भरे हैं, और वो गमन करते हुए भी उस मुनि को, क्योंकि वो समिति पूर्वक चलते हैं, तो वो पाप से लिप्त नहीं होते, उनके पाप नहीं लगता, वो हिंसा का वहां बंध नहीं है। अब आगे, जत्थे वचरै बालो परिहारन्हु विचरै तत्थेव वज्जै सो पुण बालो परिहारन्हु विमुंचै सो। जहां पर अज्ञानी भ्रमण करता है, बाल कहा उसको, ऊपर कहा ना जत्थे वचरै बालो, बाल बाल जहां भ्रमण करता है यानी अज्ञानी, जहां पर अज्ञानी भ्रमण करता है वहीं पर हिंसा के परिहार की विधि को जानने वाला भी भ्रमण करता है। क्या कहा? अज्ञानी जिस मार्ग पर से चल रहा है, ये कौन सा है? हिंसा के परिहार की विधि को जानने वाला, हिंसा कैसे टालना इस विधि को जानने वाला, वो भी वहां भ्रमण करता है। तो क्या होता है? परंतु वह अज्ञानी पाप से बनता है और परिहार विधि का जानकार उससे मुक्त होता है। हिंसा का परिहार, परिहार विशुद्धि की बात यहां नहीं उठाइए, हिंसा का परिहार करना है, नहीं हिंसा का त्याग करना है, यानी समिति पूर्वक चलने वाला है, ये उसमें परिहार में ले लेना। अब आगे स्वयं ह्य हिंसा स्वयमेव हिंसनम् न तत्परादिनम् इह द्वयम् भवेत् प्रमादहीनोऽत्र भवत्यहिंसकः प्रमादयुक्तस्तु सदैव हिंसकः। क्या कहते हैं यहाँ पर? अहिंसा स्वयं होती है और हिंसा भी स्वयं ही होती है। ऊपर लिखा ना, स्वयं ही अहिंसा स्वयमेव हिंसनम् तथा ये दोनों पराधीन नहीं है। नीचे की लाइन में लिखा है प्रमादहीनो अत्र भवति अहिंसक। प्रमाद से हीन है, जो अप्रमत्त है, जो प्रमादहीन है वह अहिंसक है, किंतु जो प्रमाद युक्त है वह सदैव हिंसक है। क्या कहा? कब हिंसक है? सदैव। प्रमाद है उसके चल रहा है, परंतु उसके वो हिंसा का परिणाम सदैव बना रहता है। जैसे हम देखते हैं ना, किसी ने वो प्रतिज्ञा नहीं की, क्या कि मुझे अभी ये जो कंदमूल आदि का त्याग है, इसी उसने प्रतिज्ञा पूर्वक ग्रहण नहीं किया, तो कहता मैं तो कभी खाता हूँ नहीं हूँ, मैंने प्रतिज्ञा भले नहीं की है परंतु मैं कभी भी नहीं खाता हूँ। फिर भी उसके जो प्रतिज्ञा नहीं लेने रूप जो परिणाम है उसका, तो वो जो उस चलता रहता है हाँ, तो उसको वो उसका पाप भी चलता रहता है उतना। क्योंकि जो हम कहते हैं ना विशिष्ट जो विधि पूर्वक कहो या प्रतिज्ञा पूर्वक व्रत अंगीकार किए जाते हैं, तो वैसे यहां क्या कहते हैं, वो प्रमाद युक्त है, ऐसा है भाई जो स्वरूप है तो उसको कहना भी चाहिए हाँ, जिसको निभाती है अभी शुरू में। अभी क्या है, भले ना अभी पूरे लाइफ टाइम की नहीं लो, एक दिन की, एक महीने की आप प्रतिज्ञा, मुझे अभी भगवान के सामने हम कह सकते हैं कि मैं आज के दिन इसका इसका मुझे त्याग है। आपको नहीं, सदैव के लिए नहीं चलता है ना, एक दिन के लिए प्रतिज्ञा पूर्वक करना आवश्यक है। 8 दिन के लिए, जैसे हम 10 दिन है अभी पर्युषण के है, 10 दिन में मुझे रात्रि भोजन का त्याग है, मुझे कंदमूल का त्याग है, इतने तो इन्हें मन ही मन में, अभी दूसरे के बताने की भी जरूरत नहीं है, परंतु इस तरह से प्रतिज्ञा पूर्वक उसको अंगीकार करना आवश्यक है। नहीं, भगवान के सामने कह दो ना, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। वैसे तो वो वैसे विधि भी होती है कि गुरु के सामने बोलना, पर अभी कोई गुरु नहीं है ना, तो हम खुद ही बोले ना, क्या करेंगे हाँ, गुरु थोड़े ही मानते शास्त्र को। हाँ, ये तो वचन के द्वारा कहने की वो पद्धति है। देखो, प्रमाद हीन है वह अहिंसक है, किंतु जो प्रमाद युक्त है वह सदैव हिंसक है। भले उसके वो कोई जा नहीं रहा, बैठा है, फिर भी वो प्रमाद वाला है ना, तो उसकी हिंसा चलती रहती है। इसीलिए तो असंयम ही कहा ना, तो असंयम के कारण वहां जितने उस गुणस्थान में बंध योग्य जितने प्रकृतियां उतनी बनती रहती है। आगे ये 6 नंबर का, वियोजयति चासुभिर्न च वदेन संयुज्यते शिवचन परोपम मर्दप ऋषस्मृतेर्विद्यते वधोपनयनभ्युपैति च परान निघ्ननिम्पपि त्वयायमतिदुर्गम प्रशमहेतुरुद्योदित। कोई प्राणी दूसरे को प्राणों से वियुक्त करता है फिर भी वह बंध से संयुक्त नहीं होता तथा परोपघात से जिसकी स्मृति कठोर हो गई है, यानी क्या, जो परोपघात का विचार करता है उसका कल्याण नहीं होता क्या, तथा कोई जीव दूसरे जीवों को नहीं मारता हुआ भी हिंसक पने को प्राप्त होता है, इस प्रकार हे जिन, तुमने यह अति गहन प्रशम का हेतु प्रकाशित किया है अर्थात शांति का मार्ग बतलाया है। यानी इसमें जो विरोधाभास बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि कोई ऐसे प्राणी दूसरों के प्राणों से वियुक्त होता है फिर भी उसको हिंसा का बंधन है। जैसे अभी जो बात की थी, मुनिराज चल रहे हैं, समिति पूर्वक चल रहे हैं और नीचे प्राण का घात भी हो जाए तो भी हिंसा, सभी जीवों के लिए नहीं बात की हाँ। और परोपघात से जिसकी स्मृति कठोर हो गई, दूसरों को बचाना ही बस उसी के विचार में चलता रहता है, ये हिंसा नहीं होती ना, वो हिंसा होती, इसी के विचार में लगा रहा है, यानी उसके कौन से भाव चल रहे हैं, शुभ भाव चल रहे हैं, उसकी मति कठोर हो गई कहाँ, तो भी क्या है, तो भी उसका कल्याण नहीं कहते, यानी उसी में रचे पचे रहे और शुद्ध भाव की वितराग भाव की पता नहीं हो उसको, तो केवल उतना ही करने से कुछ कल्याण नहीं है। दूसरा क्या है, कोई जीव दूसरे जीवों को नहीं मारता हुआ भी हिंसक पने को प्राप्त होता है। ये नहीं मारता हुआ भी क्यों, क्योंकि वो प्रमत्त है, शुद्धोपयोग नहीं है उसके, रागादि की उत्पत्ति हिंसा कहा है, तो ये प्रमाद के कारण उसके हिंसा बनी रहती, वो भले दूसरों को नहीं मारता है तो भी। इस प्रकार वो जो विरोधाभास जिसको कहते ना, ये सब कहकर ये जिनेन्द्र भगवान के शासन की बात वहां बताइए। पर उपघात उसके नहीं, उसके बारे में विचार करता है, उसका कल्याण नहीं होता। ये परोपघात है ना, उसका दूसरे को मारने का विचार, हाँ मारने का विचार भी लेना या अभी बचाने का विचार भी कहेंगे तो भी चलेगा, यानी पाप या पुण्य दोनों ही ले सकते उसमें। अब आगे पढ़ेंगे, क्षीण कषाय के प्रथम समय से लेकर अब ये उत्पन्न होने की बात चल रही है यहाँ पर। क्षीण कषाय में बादर निगोद उत्पन्न होते हैं उसकी बात बता रहे। क्षीण कषाय के प्रथम समय से लेकर बादर निगोद जीव तब तक उत्पन्न होते हैं जब तक क्षीण कषाय के काल में उनका जघन्य आयु का काल शेष रहता है। क्या कहा, अभी हमने जैसे पहले देखा था कि उसकी बात बाद में करूंगी कि ये क्षीण कषाय गुणस्थान के पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में जीव उत्पन्न हो रहे, निगोद जीव भी वहां उत्पन्न हो रहे, कब तक उत्पन्न हो गए, हम मान लेते कि उनकी लाइफ स्पैन 20 समयों की है, जघन्य में जघन्य, उसमें भी जघन्य उत्कृष्ट होगा ना, कोई 20 समय वाली होगी लाइफ, कोई 30 समय वाली होगी, मान लेते हम, असंख्यात समय तो होते ही है, परंतु कहां तक जीव उत्पन्न हो गए, वो 20 समय वाली मिनिमम पॉसिबल लाइफ है ना, तो 20 समय बाकी है क्षीण कषाय के अंत समय के पहले, तब तक वो उत्पन्न होगी, क्योंकि उत्पन्न होके उतनी लाइफ पूरी भोग के वो मरेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, इन्होंने तो नहीं, ये पूरी लाइफ करके वो मरे हैं ना, ये बीच में ही नहीं मरे हैं, बीच में ही नहीं मरे हैं, तो वहां उनके योग्य पूरी लाइफ स्पैन बिताकर मरे हैं। क्या कहते हैं, देखो फिर पढ़ते हैं इसको, क्षीण कषाय के प्रथम समय से लेकर बादर निगो जीव तब तक उत्पन्न होते हैं जब तक क्षीण कषाय के काल में उनका जघन्य आयु का काल शेष रहता है, इसके बाद नहीं उत्पन्न होते, क्योंकि उत्पन्न होने पर उनके जीवित रहने का काल नहीं रहता, यदि उत्पन्न हो जाते तो पूरे उनके लाइफ स्पैन वहां उतना काल है ही नहीं वहाँ उनको रहने के लिए। इसलिए बादर ने वो जीव यहाँ से क्षीण कषाय के अंतिम समय तक केवल मरते ही है। शुरू से क्या था, उत्पन्न भी होते थे और मरते भी, यथा योग्य उत्पत्ति भी थी और मरण भी होता था। अब मिनिमम पॉसिबल लाइफ स्पैन वाले जो वहाँ उत्पन्न हुए हैं, उसके बाद उसके आगे के समय में वो नहीं उत्पन्न हो गए। यानी वहाँ उत्पन्न होना भी रुक गया है, उत्पत्ति रुक गई है, और जो अभी उत्पन्न हुए उनका समय बिता कर ही मरेंगे। जाते इतना ही कथन करते आए, उत्पत्ति भी होती है।
जाने वाले की बात तो हमने सुनी है या सिखाई भी है, लेकिन वो उत्पन्न होते हैं
और उत्पन्न होते तब तक ही के जब तक उनकी वो पूरी लाइफ स्पैन इतना टाइम बाकी है तब तक ही उत्पन्न हो गए। देखो यहाँ क्षीण कषाय के अंतिम समय में जो आवली के असंख्यात भाग प्रमाण पुलविया है, पुलविया बताई ना, जो कि पृथक पृथक असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीरों से अपूर्ण है। पृथक पृथक का अर्थ क्या है, एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है, शरीर की बात है, और एक निगोद शरीर में अनंत जीव हो गए। उनमें स्थित अनंतानंत जीवों के, अभी ये अपने विषय चल रहे हैं ना उस पर आ रहे हैं। क्षीण कषाय के अंतिम समय में क्या पोजीशन है, आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण पुलविया है, एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है, एक एक शरीर में अनंतानंत निगोद जीव है। उन जीवों के अनंतानंत विश्रोसोपचय से युक्त कर्म और नो कर्म संघात है। कितने हैं कर्म और नो कर्म के संघात, अनंतानंत है। कैसे, अपने अपने विश्रोसोपचयों से युक्त। वह सबसे जघन्य बादर निगोद द्रव्य वर्गणा है। ये जघन्य है वो बादर निगोद द्रव्य वर्गणा, क्योंकि अनंतानंत जो जीव है उनके जो कर्म और नो कर्म जो है वहां पर और इकट्ठे है ना पूरा, इसलिए उसको निगोद वर्गणा कहा, बादर निगोद वर्गणा, जघन्य में जघन्य। अब इस बादर निगोद द्रव्य वर्गणा के स्थानों का कथन करते हैं। कल जैसे हमने वो प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा के स्थान देखे थे, एक एक परमाणु बढ़ाते बढ़ाते देखे थे, अब यहां भी बढ़ाएंगे। यथा यहां अनंतानंत जीवों के अपने विश्रसोपचय के साथ औदारिक शरीर परमाणु पुंज को पृथक स्थापित करके पुनः उन्हीं सब जीवों के अपने विश्रसोपचय सहित तेजस शरीर परमाणु पुंज को और अपने विश्रसोपचय सहित कार्बन शरीर परमाणु पुंज को पृथक स्थापित कर इन छह पुंजों के ऊपर परमाणुओं की वृद्धि कर स्थानों की उत्पत्ति का कथन करते हैं। कल जैसे हमने देखे थे छह पुंज बनाए थे, वैसे यहाँ भी छह पुंज बनाने हैं। अब वहाँ तो एक जीव था और उसका एक कार्बन शरीर, एक तेजस शरीर और उसके विश्रसोपचय थे। यहाँ जीव कितने हैं, अनंतानंत है। हर एक जीव का अपना अपना तेजस शरीर और कार्बन, अलग होगा कि एक होगा और हर एक के एक एक परमाणु के साथ विश्रसोपचय। तो ये हमने छह पुंज यहाँ देखे। अब आगे, अब उसमें वो विश्रसोपचय बढ़ाएंगे, फिर वो उसकी बात करेंगे। अब कहते एक अन्य जीव लो, पहले तो क्षीण कषाय के अंतिम समय में वो किस तरह से मिनिमम हो सकता है उसकी बात की। एक अन्य जीव लो जो क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर एक विश्रसोपचय परमाणु से औदारिक शरीर के पुंज को अधिक करके क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, तो इसके यह अन्य अपनुरुक्त स्थान होता है, क्योंकि विश्रसोपचय में एक परमाणु अधिक है। क्योंकि अनंतर पूर्व के स्थान से यहां एक परमाणु अधिक उपलब्ध होता है। पुनः एक अन्य जीव लो जो क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में दो विश्रसोपचय परमाणुओं से औदारिक शरीर विश्रसोपचय पुंज को अधिक करके स्थित है, तब उसके यह अन्य तीसरा अपनरुक्त स्थान होता है। ये कौन से जीव लेने हैं? हाँ, क्षपित कर्मांशिक कौन सा? क्षीण कषाय गुणस्थान वर्ती वो जीव कौन सा है? बारहवें गुणस्थान वाला है, कौन सा है? ये निगोद जीव की बात है। अनंतानंत जीव वाला जो है ना, बादर निगोद वर्गणा की बात चल रही है। क्षीण कषाय के अंतिम समय में जो वहां जो स्थित बादर निगोद जीव है उसकी बात चल रही है। कितने जीव देखे हमने? अनंत अनंत देखे ना निगोद जीव। अभी अन्य अभी उसमें देखे अनंत अनंत जीवों के औदारिक आदि छह पुंज देखे। अभी उसमें वो अनंत अनंत जीवों में एक जीव ऐसा है कि क्षपित कर्मांशिक रूप से आया हुआ, बाकी सब वो पुंजों के समान ही है, परंतु औदारिक के विश्रसोपचय में उसका एक परमाणु ज्यादा है। ख्याल है ना? ये निगोद जीवों की हमने देख रहे अनंत अनंत जीव निगोद जीवों के जो छह पुंज है उसके परमाणु का सबका मिलकर हमने उसको कहा कि ये बादर निगोद वर्गणा है। उन अनंत अनंत जीवों में एक जीव क्षपित कर्मांशिक ऐसा होगा कि ये तो छह पुंज इतना उसके परमाणु का स्टॉक है ही है, परंतु औदारिक के विश्रसोपचय में उसका एक परमाणु ज्यादा है। अनंत अनंत जीवों में से एक जीव ऐसा लेना उसमें। ये फिर पढ़ती हूँ मैं, पहले लाइन से बैनो। एक अन्य जीव, हाँ वो क्षपित कर्मांशिक वहां पड़ा है निगोद में। हमने पहले देखे थे एक इंद्रियों में बिताते हैं ना क्षपित कर्मांशिक जीव, और वहां एक इंद्रियों में जाने के बाद भी उनके वो सारे जो स्थिति कांड आदि होके तो क्षपित कर्मांशिक वहां भी होते हैं। देखो, एक अन्य जीव लो जो क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर एक विश्रसोपचय परमाणु से औदारिक शरीर के पुंज को अधिक करके क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, तो ये जो हमने छह पुंज देखे थे उसमें एक परमाणु की बढ़ोतरी हो गई अभी, तो इसके यह अन्य अपनरुक्त स्थान होता है। क्योंकि अनंतर पूर्व स्थान से, अभी जो हमने पहले मिनिमम पॉसिबल देखा था उस स्थान से, वो छह पुंज देखे ना हमने, उससे यहां एक परमाणु अधिक उपलब्ध होता है। पुनः एक अन्य जीव लो जो क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में दो विश्रसोपचय परमाणुओं से औदारिक शरीर विश्रसोपचय पुंज को अधिक करके स्थित है, तब उसके यह अन्य तीसरा अपनरुक्त स्थान होता है। पुनः एक अन्य जीव तीन विश्रसोपचय परमाणुओं से औदारिक शरीर विश्रसोपचय पुंज को अधिक करके क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, उसके तब चौथा अपनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। पुनः चार विश्रसोपचय परमाणुओं से औदारिक शरीर विश्रसोपचय पुंज को अधिक करके जो अन्य जीव क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, उसके तब पांचवा अपनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक परमाणु बढ़ाते हुए क्षीण कषाय के अंतिम समय में सब जीवों से अनंत गुणे औदारिक शरीर विश्रसोपचय परमाणुओं की वृद्धि होने तक स्थान उत्पन्न करने चाहिए। हाँ, देखो फिर। पुनः एक अन्य जीव लो जो क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर जघन्य द्रव्य के ऊपर औदारिक शरीर पुंज में एक औदारिक शरीर परमाणु को बढ़ाकर पुनः औदारिक शरीर विश्रसोपचय परमाणु प्रमाण विसरोसोपचय पुंज को बढ़ाकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, उसके तब अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। क्योंकि जीवों से अनंत गुणे औदारिक शरीर अनंतर पूर्व के स्थान के औदारिक विसरसोपचय पुंज के साथ इस स्थान का औदारिक शरीर विसरसोपचय पुंज समान होकर, यानी विसरसोपचय तो समान रहा परंतु औदारिक में एक परमाणु बढ़ा, यहाँ के औदारिक शरीर पुंज में एक परमाणु अधिक उपलब्ध होता है। पुनः इसके ऊपर एक औदारिक विसरसोपचय परमाणु के बढ़ने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। अभी इसको विसरसोपचय को बढ़ाओ, यह जीव राशि से अनंत गुणा बार। दो विसरसोपचय परमाणुओं के बढ़ने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, तीन विसरसोपचय परमाणुओं के बढ़ने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार सब जीवों से अनंत गुणे विसरसोपचय परमाणुओं की वृद्धि होने तक उत्तरोत्तर एक एक परमाणु को बढ़ाते जाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित होने पर अनंतर एक अन्य जीव लो जो ओघ जघन्य द्रव्य को दो औदारिक परमाणुओं से और दो बार बढ़ाए हुए विसरसोपचयों से अधिक करके क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, तब अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार इस क्रम से तब तक ओघ जघन्य में हमने जो जघन्य में जघन्य देखी थी बात, शुरू में जो हमने छह पुंज देखे थे वहां औदारिक की जो संख्या थी मिनिमम वो ओघ जघन्य, उससे इनके दो परमाणु ज्यादा है और दो पुंज वो तो विसरसोपचय भी उसके ज्यादा है। औदारिक एक परमाणु बढ़ाया था, उसके बाद फिर विसरसोपचय बढ़ाते बढ़ाते ने दूसरी बार विसरसोपचय भी बढ़ाए। हाँ नहीं, वैसा नहीं लेना। ऐसा कोई जीव है कि उसमें औदारिक परमाणु तो ज्यादा है परंतु विसरसोपचय उतना ही है। हाँ, क्योंकि विसरसोपचय एक एक परमाणु का नहीं गिना है, जो उसके पास टोटल विसरसोपचय थे उसको गिना है सभी परमाणुओं के मिलकर। विसरसोपचय उतने ही रहा, औदारिक में बढ़ गया एक। हाँ उत्कृष्ट तक गए। हाँ औदारिक का बढ़ा है, उत्कृष्ट लेना। हाँ जो उत्कृष्ट विसरसोपचय तक पहुंचा था उतना ही वाला लेना, पर औदारिक में एक खाली ज्यादा है। हाँ तभी एक एक परमाणु से बढ़ता हुआ है, तो यहाँ क्या हुआ, दो बार औदारिक भी बढ़े और विसरसोपचय भी उत्कृष्ट करे तो वो भी दो बार बढ़े। हाँ इस देखो, जघन्य द्रव्य को दो औदारिक परमाणुओं से और दो बार बढ़ाए हुए विसरसोपचयों से अधिक करके क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, तब अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार इस क्रम से तब तक बढ़ाते जाना चाहिए जब जाकर अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र औदारिक शरीर परमाणुओं की और सब जीवों से अनंत गुणे उन्हीं के विसरसोपचय परमाणुओं की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कहाँ तक करनी है इसकी बात बताई, बढ़ाते हुए भी कितनी बार बढ़ावे ऐसा प्रश्न करो। करने पर कहते हैं कि एक बादर निगोद जीव के जितने विसरसोपचय के साथ औदारिक शरीर परमाणु है उतनी बार बढ़ावे। औदारिक शरीर परमाणु कहाँ तक बढ़ावे है? तो एक बादर निगोद जीव के जितने बढ़ सकते हैं उतने बार बढ़ाओ। हाँ, ये कितने बार बढ़ाते जाना, औदारिक शरीर के परमाणु कितने बार बढ़ा सकते हैं, तो एक जीव में जितने पॉसिबल है उतनी बार बढ़ा सकते हैं। नहीं अभी नहीं उतनी बार शंका। एक जीव दो जीवों के विसर्गोपचय सहित औदारिक शरीर पुंज का आधार कैसे हो सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि एक ही जीव में असंख्यात क्षपित कर्मांशिक जीवों का औदारिक शरीर द्रव्य उपलब्ध होता है। एक क्षपित कर्मांशिक जीव वहां कितने हो सकते हैं? असंख्यात क्षपित कर्मांशिक जीव एक ही जीव में। देखो आगे कहते, यदि एक जीव में असंख्यात जीवों का द्रव्य संभव है तो बादर निगोद जघन्य वर्गणा संबंधी अनंत जीवों के औदारिक शरीर संबंधी दो पुंज, एक तो औदारिक का और एक उसका विसर्गोपचय का, दो पुंजों में एक जीव संबंधी औदारिक शरीर के दो पुंज निश्चय से संभव है, ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? उसका समाधान, नहीं ग्रहण करते। नहीं बताया है। अभी पढ़ेंगे आगे, देखो। हाँ, पुनः एक अन्य जीव लो जो पहले बढ़ाए हुए द्रव्य के साथ औदारिक शरीर को अधिक करके पुनः तेजस शरीर के विसर्गोपचय पुंज में, अभी पहले औदारिक शरीर को मैक्सिमम तक ले गए, अब तेजस शरीर के पुंज में एक परमाणु को बढ़ाकर स्थित है, तब उसके अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि अनंतर पूर्व के स्थान को देखते हुए यहाँ एक परमाणु अधिक उपलब्ध होता है। विसर्गोपचय तेजस वाला पुनः पूर्वोक्त स्थान में दो तेजस शरीर विसर्गोपचय परमाणु पुद्गलों के बढ़ाने पर, दो तेजस शरीर नहीं लेना, तेजस शरीर के दो विसर्गोपचय परमाणु, ये थोड़ी वाक्य रचना अलग है। हाँ, अन्य पुनरुक्त स्थान होता है। तीन तेजस शरीर विसर्गोपचय परमाणु बढ़ाने पुद्गलों के बढ़ाने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। तीन परमाणु, हाँ, ये दो जो है ना, तेजस शरीर के विसर्गोपचय के दो परमाणु, या तेजस शरीर दो विसर्गोपचय परमाणु, ऐसा है ना, वो परमाणु दो बढ़ने हैं, इतना लेना। ये पूरा एक कर दो ना, तेजस शरीर विसर्गोपचय परमाणु कितने? दो। इसको जोड़ना ज्यादा आसान है। वो तो मुझे भी नहीं समझ में है। देखो, यदि एक जीव में असंख्यात जीवों का द्रव्य संभव है, यहाँ तो निगोद है ना, तो एक ही जगह जीव है, इतने सारे जीव, असंख्यात जीवों का द्रव्य संभव है, तो बादर निगोद जघन्य द्रव्य वर्गणा संबंधी अनंत जीवों के औदारिक शरीर संबंधी दो पुंजों में एक जीव संबंधी औदारिक शरीर के दो पुंज निश्चय से संभव है, ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते? वो एग्जैक्ट क्या कहना चाहते वो मुझे ख्याल नहीं आया। ये यहां से शुरू हुआ था ना, 93 पेज पर, बढ़ाते हुए कितने बार बढ़ावे, उसके उत्तर में उन्होंने दिया था नीचे से, वो शंका के ऊपर दूसरी लाइन, बढ़ाते हुए कितने बार बढ़ावे, ऐसा प्रश्न करने पर कहते कि एक बादर निगोद जीव के जितने विसर्गोपचय के साथ औदारिक शरीर परमाणु है उतनी बार बढ़ावे। पहला एक जीव का लिया, फिर उसमें और एक जीव बढ़ाया था, एक एक्स्ट्रा जीव लिया था उसकी बात करते हैं। तो वो तो पहले के जीव के साथ इसको क्यों नहीं लिया, पहले असंख्यात को लिया ही था एक साथ, ऐसा लेते हैं। फिर भी उसका एग्जैक्ट आगे पढ़कर ख्याल में आए तो हाँ सबके लिए एक जी, एक जी, एक है, मगर यहाँ अलग सी बात की। देखो सभी जीवों के अवतारी शरीर ऐसा अलग से लिखा है, देखो इतनी पिशुली होती है उसमें असंख्य इतने असंख्यात देह है, ऐसा कहा था ना। तो वहाँ कहते वो तो जहाँ एक एक का शरीर है वहाँ असंख्यात का शरीर है, इस अपेक्षा से असंख्यात देह है ना। अभी आगे बढ़ेंगे जितना समझते समझेंगे। कभी कभी आगे पढ़ने पर पहले का क्लियरिटी ज़्यादा हो जाती है, हम पढ़ेंगे। देखो 94 पृष्ठ पर नीचे तीन की बात पढ़ी थी ना, तीन तेजस शरीर विश्वसोपचय परमाणु पुद्गलों के बढ़ाने पर अन्य अपनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार एक से लेकर उत्तरोत्तर एक एक परमाणु तब तक बढ़ाना चाहिए जब जाकर सब जीवों से अनंत गुणे तेजस शरीर विश्वसोपचय परमाणुओं की वृद्धि हो जाती है। तेजस शरीर का जो परमाणु पुंज विश्वसोपचय वाला था वो सब जीवों से अनंत गुणे जब तक बढ़ता है तब तक एक 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 परमाणु बढ़ाते जाना चाहिए। उतने भेद यह स्थान ही बताना चाहते हो, एक एक से बढ़ते हुए स्थान बताना उनका प्रयोजन है। अनंतर अन्य एक अन्य जीव लो जो औदारिक शरीर के दो पुंजों में एक जीव संबंधी औदारिक शरीर के दो पुंज बढ़ाकर तेजस शरीर को एक तेजस परमाणु से अधिक करके तथा एक तेजस शरीर के परमाणु से संबंध रखने योग्य और पहले के समान बढ़ाए हुए अनंत परमाणु प्रमाण तेजस शरीर विश्वसोपचयों को बढ़ाकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है तब उसके अन्य अपनरुक्त स्थान होता है। ये तो क्षीण कषाय की बात कर रहे हैं। अंतिम समय में जो स्थित है उसकी बात चल रही है यहाँ, है ना। एक एक जीव बढ़ाना चाहिए ऐसे ही लिखा है उन्होंने। ये बात आगे आएगी क्योंकि एक एक जीव बढ़ाना यानी वो तो निगोद वाला ही होना चाहिए। कहाँ तक पढ़ा मैंने, हाँ कारण सुगम है उसके पहले, पहले के समान बढ़ाते हुए अनंत परमाणु प्रमाण। देखो नीचे से तीसरी लाइन, तेजस शरीर विश्वसोपचयों को बढ़ाकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है तब उसके अन्य अपनरुक्त स्थान होता है, कारण सुगम है। अनंतर एक अन्य जीव लो जो तेजस शरीर को एक विश्वसोपचय परमाणु अधिक करके स्थित है उसके तब अन्य अपनरुक्त स्थान होता है। पुनः दो विश्वसोपचय परमाणु पुद्गलों की वृद्धि होने पर अन्य अपनरुक्त स्थान होता है। तीन विश्वसोपचय परमाणु पुद्गलों की वृद्धि होने पर अन्य अपनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार एक तेजस शरीर परमाणु से संबंध योग्य सब जीवों से अनंत गुणे परमाणुओं की वृद्धि होने तक उत्तरोत्तर एक एक परमाणु बढ़ाना चाहिए। किसका, विश्वसोपचय का, तेजस के विश्वसोपचय का एक एक परमाणु बढ़ाते जाना। अंतिम समय में ही बात चल रही है सब, अंतिम समय में ही अन्य अन्य विकल्प बता रहे हैं। जो अनंत प्रमाण बाकी है उसमें भी कोई जीव कम ज्यादा हो गया ना, उसमें मिनिमम से हमने शुरू किया था, अब उसमें कोई जीव ऐसा है कि जिसमें तेजस में विश्रसोपचय ज्यादा है, किसी में तो विश्रसोपचय उतना ही है, तेजस का परमाणु ज्यादा है, ऐसे अन्य अन्य जीवों की वहां जो उपस्थिति निगोद, हाँ ये ज्यादा जीव है तो उनका तेजस के परमाणु भी ज्यादा होंगे, इस तरह से लेना है उनको। हाँ निगोद में ही बात ये हो रही है। अभी चौथी लाइन, परमाणु बढ़ाने अनंतर एक अन्य जीव लो जो दो तेजस परमाणुओं से तेजस शरीर को अधिक करके, यानी उसके विश्रसोपचय उतना ही रहा और तेजस परमाणु के दो परमाणु बढ़े करके, दो तेजस परमाणुओं के योग्य विश्रसोपचय परमाणुओं से तेजस शरीर विश्रसोपचय पुंज को अधिक करके क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, तब उसके अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस क्रम से तेजस शरीर पुंज में अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र तेजस शरीर परमाणुओं की, तेजस शरीर परमाणु कितने बढ़ेंगे तो ये अभव्यों से अनंत गुणे इतने, तथा और विश्रसोपचय कितने कितने बढ़ेंगे, सब जीवों से अनंत गुणे विश्रसोपचय परमाणुओं की वृद्धि होने तक ले जाना चाहिए। वृद्धि होते हुए भी कितने परमाणु वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं कि एक बादर निगोद जीव के तेजस शरीर में विश्रसोपचय सहित जितने परमाणु होते हैं उतने परमाणु वृद्धि को प्राप्त होते हैं। एक बादर निगोद जीव के तेजस शरीर में, हाँ पुनः एक अन्य जीव लो जिसने इस प्रकार औदारिक शरीर और तेजस शरीर की वृद्धि की है, तथा जो कार्मान शरीर विश्रसोपचय पुंज में एक परमाणु अधिक करके अंतिम समयवर्ती क्षीण कषाई हुआ है, उसके तब अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। पुनः दो कार्मण विश्रसोपचय पुद्गलों की वृद्धि होने पर तीसरा अपुनरुक्त स्थान होता है, तीन विश्रसोपचय पुद्गलों की वृद्धि होने पर चौथा अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार एकोत्तर के क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे कार्मण विश्रसोपचय परमाणु बढ़ाने चाहिए। इस प्रकार जानकर कार्मण शरीर पुंज में अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत में भाग मात्र कार्मण शरीर परमाणुओं की, तथा सब जीवों से अनंत गुणे विश्रसोपचय परमाणुओं की वृद्धि होने तक ले जाना चाहिए। वृद्धि को प्राप्त होते हुए कितने वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसा प्रश्न करने पर कहते हैं कि एक जीव में जितने कर्म परमाणु और कार्मण शरीर विश्रसोपचय परमाणु पुद्गल होते हैं उतने परमाणु वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अनंतर एक अन्य जीव लो जो पूर्व विधि से आकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में जघन्य बादर निगोद वर्गणा के ऊपर एक जीव को अधिक करके स्थित है। एक जीव को अधिक करके ने? ये निगोद जीव उसमें एक एक्स्ट्रा है, तब यह स्थान पुनरुक्त है, क्योंकि पहले के अनंतर पिछले स्थान के औदारिक तेजस और कार्मण शरीरों के पुंज से यहाँ के उनके छह पुंज सदृश उपलब्ध होते हैं। अब कहते हैं शंका, पहले के जीवों से सांप्रतिक वर्गणा संबंधी एक जीव अधिक है, इसलिए इस स्थान को अपुनरुक्त क्यों नहीं कहते हैं? ये तो दूसरा स्थान हुआ ना, कहते इसको अपुनरुक्त कहना चाहिए, इसमें एक जीव ज्यादा है। समाधान, नहीं, क्योंकि जीव की बंधनीय संज्ञा नहीं है। जीव भले ज्यादा है परंतु यहाँ तो परमाणुओं की संख्या को काउंट कर रहे हैं, वो जीव एक्स्ट्रा है उसमें, परंतु संख्या परमाणुओं की उतनी ही है, इसलिए कहते जीव की बंधनीय संज्ञा नहीं है, पुद्गलों की ही बंधनीय संज्ञा है। परंतु जीव पुद्गल नहीं हो सकता, क्योंकि अमूर्त को मूर्त रूप होने में विरोध आता है। पुनः एक अन्य जीव लो, जो सांप्रतिक बादर निगोद वर्गना के ऊपर एक औदारिक शरीर विश्रसोपचे परमाणुओं को बढ़ाकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, तब अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। दूसरे परमाणु की वृद्धि होने पर दूसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। तीन विश्रसोपचे परमाणु पुद्गलों की वृद्धि होने पर तीसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। चार विश्रसोपचे परमाणु पुद्गलों की वृद्धि होने पर चौथा अपनरुक्त स्थान होता है। हाँ, उदारिक शरीर कॉमन लिया। इस प्रकार सब विश्रसोपचय परमाणु पुद्गलों की वृद्धि होने तक ले जाना चाहिए। होते हुए भी वे कितने होते हैं, ऐसा प्रश्न करने पर कहते हैं कि एक औदारिक शरीर परमाणु के विश्रसोपचय मात्र होते हैं। हमने देखा ना, एक के साथ कितने हो सकते हैं, तो जीव राशि से अनंत गुणे, उतना बढ़ाना। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए स्थान से एक औदारी परमाणु के विश्रसोपचय को बढ़ाकर स्थित हुआ अंतिम समयवर्ती क्षीण कषाय स्थान अपुनरुक्त स्थान होता है, कारण सुगम है। इस प्रकार इस विधि से औदारिक शरीर के दो पुंज तब तक बढ़ाने चाहिए जब तक सब जीवों से अनंत गुणे विश्रसोपचय परमाणु तथा अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण औदारिक शरीर संबंधी परमाणु वृद्धि को प्राप्त नहीं हो जाते। ऐसा होते भी हुए भी वे कितने होते हैं, ऐसा प्रश्न करने पर कहते हैं एक बादर निगोद जीव के औदारिक शरीर में जितने औदारिक शरीर के परमाणु और उसके विश्रसोपचय परमाणु होते हैं तन्मात्र होते हैं। इसी प्रकार एक बादर निगोद जीव के द्वारा सचित हुआ है तेजस शरीर और कार्मान शरीर के चार पुंज प्रमाण द्रव्य के प्राप्त होने तक अपने अपने विश्रसोपचय के साथ तेजस शरीर पुंज को और कार्मान शरीर पुंज को अनुपूर्वी क्रम से बढ़ाना चाहिए। उसमें भी बढ़ाना, छह पुंज किए थे ना पहले औदारिक के बताए, तेजस और कार्मान के भी ऐसे बढ़ाना। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुआ जीव तथा क्षीण कषाय के अंतिम समय में जघन्य बादर निगोद वर्गणा के दो बादर निगोद जीवों से अधिक करके क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित हुआ अन्य जीव समान है। देखो, ये क्षीण कषाय वाला जीव लिया जिसके सत्ता में दो बादर निगोद जीव ज्यादा है। हाँ, उन सबका मिलकर जो कोई एक है, और इनका जो है, हाँ, हर एक 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 जीव के अलग नहीं लिए, परंतु यह दो जीवों को लिया, कॉमन ही है ना सब में, इसलिए दो जीव ज्यादा लिए। ऐसा दूसरे शरीर वाला, क्योंकि वहां हमने पुलविया देखी थी, निगोद शरीर ज्यादा है ना वहां पर, इसलिए वहां पूछा था असंख्यात जीव एक उनका एक शरीर है तो, परंतु ये दूसरा वाला ऐसा लेना, दूसरा शरीर वाला। पूर्वोक्त स्थान में क्रम से बढ़ाकर स्थित हुआ द्रव्य यहाँ से दो जीवों में उपलब्ध होता है। पहले में जो बढ़ाते बढ़ाते लिया था, अभी दो अन्य जीवों की अपेक्षा से वहां उतना ही द्रव्य उसको बढ़ा रहे हैं। पहले जीव को छोड़कर तथा इसे ग्रहण कर इसके ऊपर पहले के समान एक अन्य जीव बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार स्थान और शास्त्र के अविरोध से उत्तरोत्तर एक एक जीव को बढ़ाते हुए अनंतानंत कर्म और नौकर्म पुद्गल परमाणु पुद्गलों से व्याप्त सब जीव प्रदेश है, जिनके ऐसे पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण जीव बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर पुनः यहाँ के अनंत जीवों के असंख्यात विभाग प्रमाण बढ़ाए, परंतु है वो जीव अनंत, यहाँ के अनंत जीवों के औदारिक तेजस और कार्मन शरीरों के क्रम से छह पुंज अपने सर्वोत्कृष्ट प्रमाण को प्राप्त होने तक बढ़ाने चाहिए। शंका। अंतिम समयवर्ती क्षीण कषाय जीव के यह जो उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा होती है, इसका स्वामी कौन जीव है? ये उत्कृष्ट किस अपेक्षा से? अंतिम समय क्षीण कषाय वाले के लिए। पूरे उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा नहीं लिया है, नहीं समझा? जघन्य किसके होता है? क्षीण कषाय के अंतिम समय वाले के। क्षीण कषाय के अंतिम समय में ही एक 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 परमाणु बढ़ाते बढ़ाते बताए हैं। तो क्षीण कषाय के अंतिम समय में ही जो उत्कृष्ट पॉसिबल है उसको बताया है। पूरे लोक में कौन उत्कृष्ट पॉसिबल बादर निगोद वर्गण है उसकी बात यहां नहीं ली है। देखो क्या कहा, अंतिम समयवर्ती क्षीण कषाय जीव के यह जो उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा होती है, उसका स्वामी कौन जीव है? ख्याल है ना? यानी वो क्षीण कषाय में ही जघन्य और उत्कृष्ट लगा रहे। अभी हम क्षीण कषाय के द्विचरम समय को भी नहीं आए हैं, अंतिम समय की बात चल रही है। इतने सारे विकल्प उन्होंने बताए हैं, वो क्षीण कषाय के अंतिम समय वाले के ही बताए, जघन्य से उत्कृष्ट। ये विश्व में सर्वोत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा कौन सी, उसकी बात यहाँ नहीं चल रही है। हाँ, तो उसका समाधान, जो गुणित कर्मांशिक है, यानी जिसके अपने भी कर्म ज्यादा है, जो सबसे उत्कृष्ट शरीर अवगाहना से युक्त है, ऐसा अंतिम समयवर्ती क्षीण कषाय जीव उत्कृष्ट वर्गणा का स्वामी है। वो जीव की, क्षीण कषाय वाले जीव की, क्षीण कषाय वाले जीव की। देखो वर्गणा में पूरा ही लेना है ना, उसका औदारिक शरीर है, उसके कारमान है, उसका तेजस है, और ये सारे जीवों का, निगोद जीवों का तेजस कारमान है, सबको मिलाकर बादर निगोद वर्गणा कही थी। एक पुंज है ना, इकट्ठा एक जगह। शपित कर्म हो गया, शुरू ही उसी वहीं से हुआ था कि जो क्षपित कर्मांशिक रूप से आया हुआ है, ये उसके जघन्य बादर निगोद वर्गणा होती है, वहां लिया था। क्षपित कर्मांशिक और एक जीव आया, देखो देखो, ये जो हमने देखा था ना, बादर निगोद द्रव्य वर्गणा के स्थानों का कथन, वहां से शुरू हुआ था कि 91 में मैं अंतिम देख रहे थे, वहां उन्होंने बताया कि देखो क्षपित कर्मांशिक विधि से आते, यानी यहाँ जो 12वें गुणस्थान वाले की बात है, ये क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर ये निगोदों में भी उसको लिया है। वो तो बात आएगी बाद में कि एक साथ कितने क्षपित कर्मांशिक हो सकते हैं, उसकी भी लिमिट है। वहां पर निगोद आए हैं ना, वहां पर उसमें भी क्षपित कर्मांशिक कुछ हो गए। हाँ देखो, यहाँ पर उत्कृष्ट वर्गणा की पुलवियां आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही होती है। जघन्य कितनी देखी थी हम? जघन्य में पुलविया कितनी देखी थी? आवली के असंख्यात भाग ही देखी थी हमने, देखा था। जघन्य हो या उत्कृष्ट हो, 78 पेज पर देखा था ना कि जघन्य हो या उत्कृष्ट हो, आवली के असंख्यात भाग प्रमाण ही होती है। 88 के पहली लाइन थी, देखो। क्षीण कषाय जीव के शरीर में उत्कृष्ट और जघन्य पुलविया आवली के असंख्यात भाग मात्र ही होती है। ये उसके शरीर में इतनी पुलवियां है उसकी बात है। असंख्यात लोक प्रमाण नहीं होती क्योंकि ऐसा स्वभाव है, ये पहले उन्होंने बताया था। शंका, असंख्यात लोक प्रमाण पुलवियां कहां पर होती है? क्योंकि ये बात तो आई थी ना, एक स्कंदे में इतने अंडर, फिर आवास, फिर पुलविया, वो कहां पर पाई जाती है? समाधान, मूली, महामत्स्य, थुहर और लतादिका में होती है। में करना ए हुआ है ना, मूली 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 गाजर, वो है ना, वो मूली महामत्स्य के शरीर में, वहां भी है, अवतारिक शरीर है तो वहां उसके आधार से निगोद रहते हैं, तो उसके तो और ज्यादा होगा, वहां पर अवगाहना बड़ी है ना उसकी, तो वहां निगोद भी ज्यादा रहेंगे वहां, और एक्चुअली उनके पुलविया ज्यादा पाई जाती हैं। थुहर है ना, वो थोर, हाँ अश्विन भाई कहते हैं हम तो बटाटे को गया बीता मानते थे, हाँ अपना से देखो, इसीलिए तो ये माउस भक्षण का दोष पता है, माउस को ये टच भी नहीं करते, क्यों कहते माउस किसको कहना? द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जो अवतारिक शरीर है उसको माउस संज्ञा है, कि माउस का निषेध क्यों है इतना? तो उसमें ये अनंतानंत निगोद राशि, निरंतर उत्पत्ति और मरण चलता रहता है, वो चमड़े में भी, अभी जीव तो निकल गया, वो चमड़े में भी अनंतानंत उसका, तो वो बादर निगोद का रहने का ठिकाना है वो। ये तो चमड़े की वस्तुएं क्यों नहीं पहनने, तो उसमें ये दोष है। आप कहेंगे हम कहां उसको मारते हैं हाँ, वो तो पहले तो चमड़े की थैलियों में वो पानी भी लाते थे, पखाल, वो मोट भी, वो पहले वीर में से निकालने के लिए वो चमड़े की मोट आती थी, ये सारा निषेध करते थे उसका। ये हिंग वगैरह भी पहले चमड़े की बैगों में आता था, इसलिए वो हाँ उसको नहीं खाते थे, बाजार की चीज़ें क्यों नहीं खाते थे? अभी आजकल ये प्लास्टिक रेगजीन सब निकल गया है। देखो, एक एक पुलवी में, ये समाधान की दूसरी लाइन, एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होते हैं, और एक एक निगोद शरीर में अनंतानंत निगोद जीव होते हैं, परंतु उन जीवों में आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण जीव, ये यहां बात आई, जीव गुणित कर्मांशिक होते हैं तथा बाकी के सब जीव गुणित गोहलमान होते हैं। जनरल बात की, क्योंकि उनके भी लेना है ना कर्म, उनके पुंज को वहां गुणित कर्मांशिक रूप से आए हैं, उनके परमाणु ज्यादा है, गुणित घोलमान है वो तो कम ज्यादा होने वाले। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए क्षीण कषाय के अंतिम समय में और वृद्धि नहीं होती, यानी क्षीण कषाय में पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल बता दी, उत्कृष्ट निगोद वर्गणा, बादर निगोद वर्गणा, जघन्य से शुरू करके उत्कृष्ट तक देखे, उसमें भी ये जो अन्य अन्य अनेक निगोद जीव ज्यादा आएंगे, उसमें भी जो गुणित कर्मांशिक हो गए, कोई गुणित गोलमान हो गए, उनकी अपेक्षा वहां परमाणुओं का संख्या भी बढ़ेगी। वो निगोद जीवों में भी कोई गुणित कर्मांशिक है ना, जैसे ये स्वयं गुणित कर्मांशिक है, वो आने वाला निगोद जीव भी गुणित कर्मांशिक, क्योंकि वहां स्थित हुए जीवों के औदारिक तेजस और कारमान शरीर सर्वोत्कृष्ट भाव को प्राप्त हो गए हैं। वहां स्थित हुए जीव यानी क्या, निगोद जीवों की बात है ना यहाँ पर। यह अंतिम समयवर्ती क्षीण कषाय के क्षी करो बरोबर उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा क्षीण कषाय के साथ ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वह एक बंधन बद्ध है। ये यहां बात आ गई, वो जीव के अपने औदारिक तेजस कारमान के परमाणु और इन अनंतानंत जीवों के सब एक बंधन में बद्ध है, उसको बादर निगोद वर्गणा कहा है। हाँ, वो मुनि के भी, बारहवें गुणस्थानवर्ती मुनि का और ये इन निगोदों का एक बंधन में बद्ध है, बाकी कल हम बात करेंगे। जावानी के ज्ञान ते बता देता हूँ।